जैन इस वक्त अपने घर पर आया हुआ था। उसे अपने अब्बू शारिक से बात करनी थी, जिनकी पाकिस्तान आर्मी में एक हाई पोजीशन थी। जैन उनसे ईशानी को इंडिया भेजने के बारे में बात करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे के आगे पहुंचा, उसने शारिक को किसी से कॉल पर बात करते सुना। शारिक कॉल पर किसी को कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इलीगल स्मगलिंग चल रही है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शामिल है। पिछले हफ्ते ही एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें काफी सारी लड़कियों और बच्चियों को इंडिया से पाकिस्तान लाया जा रहा था। उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से वो पकड़े गए थे। ईशानी भी इसी ट्रक में थी, पर किस्मत से वो एक्सीडेंट के वक्त दूर जा गिरी थी। उनकी बातों से जैन समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो मन ही मन बोला, अब्बू तो पहले से ही इतने खफा हैं, अगर हमने उनसे ईशानी के बारे में बात की तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लगता है अम्मी सही कह रही थी, उनसे बात करने का ये सही वक्त नहीं है, रात को डिनर के बाद बात करेंगे। जैन घबराकर उल्टे पैर लौटने को हुआ, तभी शारिक ने उसे देख लिया था। वो तेज और सख्त आवाज में बोले, जैन तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो ड्यूटी लगी हुई है ना? जहां तक मुझे पता है तुम्हें अभी किसी तरह की छुट्टियां भी नहीं मिलने वाली थी। या अल्लाह संभाल लेना, हमें जन्नत से शादी किए बिना फना नहीं होना है, जैन ने अपने हाथ दुआ में ऊपर उठाकर कहा और फिर जल्दी से उनकी तरफ पलट गया। उसकी नजरें नीचे थीं। जैन की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके चुप रहने पर शारिक ने फिर से पूछा, सुनाए उस तरफ का माहौल थोड़ा गर्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी तरह की चोट लगी हो और इस वजह से तुम्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है? तुम ठीक हो ना? शारिक कितने भी सख्त मिजाज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार करते थे। जैन ने जल्दी से ऊपर देखा और ना में सिर हिला दिया। वो धीरे से बोला, वो हमें आपसे एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? शारिक ने भौहें उठाकर पूछा। कहीं तुम्हारी अम्मी की तरह तुम भी तबादला कराने के लिए तो हमारे पास नहीं आए हो ना? सब कुछ भले ही मेरे बस में हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कभी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाता। जैन ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, एक तो पहले ही अपनी बातों और उसूलों से इतना डरा देते हैं कि कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, अब कैसे इन्हें कहूं कि मैं जो मदद मांगने के लिए आया हूं उसमें इन्हें अपने उसूलों की कुर्बानी देनी होगी। जैन के कोई जवाब न देने पर शारिक ने हल्के गुस्से में कहा, अब बुद्ध बने क्या सोच रहे हो? किस काम के लिए आए हो? जल्दी बोलो। वो आपसे बात करनी थी, बैठकर बात करते हैं अब्बू, जैन ने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा और फिर कमरे के अंदर आ गया। अगले ही पल वो वहां लगे सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। जैन ने गहरी सांस ली और खुद को सख्त करते हुए कहा, हम जानते हैं कि हम अभी जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप गुस्सा करेंगे और शायद आपका हाथ भी उठ जाए, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा क्या कर दिया तुमने जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आएगा? तुम तो हमेशा ओबीडियंट बच्चे रहे हो, शारिक ने हैरानी से पूछा। आज भी ओबीडियंट ही हैं, लेकिन एक गलती हो गई है, जैन ने नजरें झुकाकर कहा। वो एक्चुअली अब्बू, लगभग 10 दिन हम पहले रात के वक्त में आदम और साथ के साथ गश्त लगा रहा था। वहां हमें पेड़ों के बीच एक लड़की लटकी हुई मिली। वो जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। हमने उसकी मदद की थी। हाँ तो क्या गलत किया? एक मजलूम इंसान की मदद करना अच्छी बात होती है। कैसी है वो लड़की? ठीक हो गई है तो उसे उसके घर तक पहुंचा दो, शारिक ने काफी बेपरवाही से जवाब दिया। वो नहीं जानते हैं कि जैन यहाँ जिस लड़की की बात कर रहा है वो इंडिया से आई थी। जैन ने गहरी सांस ली और फिर शारिक की तरफ देखकर धीरे से कहा, एक्चुअली वो लड़की इंडिया से आई है। वो उस ट्रक में आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही जैन ने कहा, शारिक अपनी जगह से खड़े हो गए। वो उस पर चिल्लाकर बोले, पागल तो नहीं हो गए हो तुम और ये बात मुझे अब आकर बता रहे हो? वो लड़की जासूस हो सकती है। जानते भी हो उस ट्रक में 3 लड़कियों के जासूस होने का दावा किया जा रहा था। वो जासूस नहीं है, मैंने उसकी खोजबीन कर ली है। प्लीज उसे कैसे भी करके इंडिया पहुंचा दीजिए, जैन ने ईशानी की तरफ से सफाई देते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं या कुछ और, मुझे तुमसे इसका मकली की उम्मीद नहीं थी। ये जानने के बाद भी वो लड़की इंडिया से आई हुई है, तुम उसे अपने घर पर रख रहे हो और अब मदद के लिए मेरे पास आए हो। जैन, फिलहाल के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा अब्बू हूं। मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूं कि अभी उस लड़की को आर्मी कैंप लेकर पहुंचो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शारिक ने खड़े होकर सख्त आवाज में कहा। जैन को जिसका डर था वही हुआ। कहीं ना कहीं उसके दिल में यही था कि उसके डैड उसकी बात नहीं सुनेंगे और ईशानी को आर्मी कैंप भेजने की बात कहेंगे, लेकिन जैन इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसने जन्नत और ईशानी से वादा किया था कि वो ईशानी को हर हाल में इंडिया पहुंचाकर दम लेगा। जैन ने नजरें झुकाई और नामे सिर हिलाकर बोला, हम अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो लड़की मासूम है और हमने उससे वादा किया है कि हम उसे उसके घर पहुंचाकर रहेंगे। बोलते हुए जैन ने अपनी नजरें उठाई और शारिक की आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लगा। तुमने आज तक कभी हमसे ऊंची आवाज में इस तरह नजर मिलाकर बात नहीं की है और आज ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? अपने बाप की न सही लेकिन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट तुम्हें करनी होगी, शारिक गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोले। बाप बेटे की बहस इस कदर बढ़ गई थी कि उस कमरे से आने वाली आवाज तेज होने लगी। घर में चिल्लाने की आवाज सुनकर शहनाज जल्दी से दौड़कर उस कमरे में आई। उसके साथ जैन की छोटी बहन भी थी जो लगभग 17 साल की थी। जैन की बहन ने उसकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, भाई हमें नहीं पता था कि आप घर आए हुए हैं, पहले क्यों नहीं बताया?
शारिक ने गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखा और चिल्लाकर बोले, जिया अभी के अभी अपने कमरे के अंदर जाओ, यहाँ हमारी जरूरी बात हो रही है और तुम उन बातों के लिए बहुत छोटी हो। जिया ने शहनाज की तरफ देखा तो उसने इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। जिया वहां से चली गई थी। उसके जाते ही शहनाज ने शारिक के पास आकर कहा, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप जिया पर गुस्सा कर रहे हैं? आपने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये बात तुम अपने नवाबजादे से पूछोगी तो ज्यादा अच्छे से बता देगा। इसे बोल दो कि हमारी बात अच्छे से मान ले, वरना अगर हम अपनी पर आ गए तो इसे भी उस लड़की के साथ जेल की हवा खानी पड़ सकती है, शारिक ने गुस्से में जवाब दिया। उनकी बातों से शहनाज समझ गई थी कि मामला वाकई काफी सीरियस है। शहनाज जैन के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ है जैन? इस तरह तुम कभी ड्यूटी के बीच में घर नहीं आते और अब तुम्हारे अब्बू तुम पर चिल्ला रहे हैं। इज एनीथिंग सीरियस बेटा? हमने बस इनसे एक मदद मांगी है, जैन ने जवाब दिया। बोलते हुए उसने शारिक की तरफ देखा और सख्ती से कहा, लेकिन हर बार की तरह हमें नाउम्मीदी हाथ लगी है। बाकी बार हमें इतना दुख नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। गम तो मुझे भी हो रहा है कि मेरा बेटा कौन से रास्ते चल पड़ा है। जन्नत से तुम्हारा निकाह होने वाला था ना, फिर अचानक किसी और लड़की के लिए तुम हमसे लड़ रहे हो, शारिक ने आवाज ऊंची करके कहा।
शारिक की बातों से शहनाज को लगा कि जैन किसी और लड़की से शादी की जिद कर रहा है। वो तुरंत गुस्से में बोली, लेकिन जन्नत से तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से होने वाला था, फिर अचानक दूसरी लड़की कहाँ से बीच में आ गई? होश में तो हो तुम अपने? हम नवाज भाई को क्या जवाब देंगे? प्लीज अम्मी, बात को हवा मत दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, जैन ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। वो हमारे लिए जिया की तरह है, गलती से यहाँ आकर फंस गई है, तो इनसे बस एक छोटी सी मदद मांगी थी कि उसे घर तक पहुँचा दे। शहनाज ने शारिक की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, ये लो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमें लगा न जाने कौन सी बात हो गई होगी जिसकी वजह से पहली बार बाप बेटे के बीच में इतनी बहस हो गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही माजला है। आप उस लड़की को घर पहुँचा क्यों नहीं देते? बोलते हुए शहनाज ने जैन की तरफ देखकर कहा, इतने छोटे से मामले में तुम अपने अब्बू की हेल्प क्यों ले रहे हो? उसे तो तुम खुद ही घर तक छोड़कर आ सकते हो। हाँ, अब लग तो ऐसे ही रहा है कि हमें खुद ही उसे घर छोड़कर आना होगा, जैन ने शारिक की तरफ देखकर कहा और फिर वहां से चला गया। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम वहां पहुंचोगे उससे पहले वो लड़की आर्मी कैंप में मिलेगी और ये चैलेंज है हमारा तुम्हें, शारिक ने पीछे से चिल्लाकर कहा, लेकिन जैन उनकी बातें अनसुनी करके चला गया। क्या लगता है कि ईशानिया पकड़ी जाएगी? क्योंकि जैन के डैड तो काफी उसूलों वाले हैं और लगता नहीं कि वो ईशानी को इतनी आसानी से इंडिया जाने देंगे। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।